मैं ठीक हूँ, लो थोड़ा सा पानी पी लो। कायरव ने तुरंत पानी का ग्लास उठाकर उसके होठों से लगा दिया। इनाया ने थोड़ा पानी पिया, फिर ग्लास हटा दिया। कायरव ने उसे वापस टेबल पर रखा और एक बार फिर उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। क्या हो गया था तुम्हें? पता नहीं, शायद ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था तो पेट में तेज दर्द उठा, लेकिन अब ठीक हूँ मैं। सच में अब दर्द भी नहीं हो रहा, तुम परेशान मत हो। इनाया ने अपनी हथेली से उसके गाल को सहला दिया। कायरव के एक्सप्रेशन जरा बिगड़े और अगले ही पल वो तीखी निगाहों से उसे घूरते हुए गुस्से से भड़क उठा। तुमने मेरी जान निकाल ली थी और अब बोल रही हो कि मैं परेशान ना हो? कितनी बार समझाया है मैंने कि इतना स्ट्रेस मत लिया करो, तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं सुनती, बस हर बार अपनी लापरवाहियों से मुझे परेशान करती रहती हो। तगड़ी डांट पड़ी थी। इनाया की शक्ल देखने लायक थी। वो कुछ पल फटी फटी आंखों से कायरव को देखती रही, फिर नाराजगी से गालों को फुला लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी प्रेग्नेंट बीवी को इतनी जोर की डांटते हुए? तुम्हें जरा भी एहसास है कि मैं अभी कितना डर गया था? कायरव ने आंखें दिखाई और इनाया ने मुंह बिचका लिया। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया था, तुम कभी कुछ जानबूझकर करती ही कहाँ हो? कायरव ने तंज कसा। उसके तीखे तेवर देखकर इनाया कुछ हैरान हुई, फिर नाक से कोड़ते हुए मुंह बना लिया। जाओ, मैं अब तुमसे बात ही नहीं करती, बस यही तो आता है तुम्हें, पहले गलती करो और फिर खुद ही मुंह फुलाकर बैठ जाओ। इनाया ने पलटकर कुछ कहा ही नहीं, बस मुंह फुलाए और चेहरा फेरे बैठी रही। कायरव कुछ देर पैनी निगाहों से उसे घूरता रहा, फिर अपनी गर्दन को अपनी हथेरी से सहलाया, गहरी सांस छोड़ी। सॉरी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी, इनाया तुनकते हुए बोली। वो अब भी मुंह फेरे बैठी थी। उसका एटीट्यूड देखकर कायरव की भौहें तन गईं। गलती तुम्हारी थी, उसके बाद भी मैं सॉरी बोल रहा हूं ना, तो अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ। मैं तो दिखाऊंगी, बोलो क्या करोगी? इनाया ने अकड़ते हुए दोनों हाथ कमर पर रखे और आईब्रो चढ़ाकर उसे देखा। कायरव की त्योरियां चढ़ गईं। उसने आंखें तरेर कर उसे घूरा। इनाया, घूरो मत मुझे, मेरी आंखें तुमसे ज्यादा बड़ी हैं और जुबान भी, कायरव झल्लाया। इनाया ने तुरंत आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा और उंगली दिखाते हुए बोली, ए, मेरी जुबान पर मत जाना। जाऊंगा, कायरव ने उसकी उंगली में अपनी उंगली उलझाई और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांकने लगा। बोलो क्या करोगी? तुम्हारी नाक काट दूंगी, इनाया ने दांत किटकिटाए। कायरव पूरी तरह चौंका। व्हाट, बताऊं अभी काट कर? इनाया ने तुरंत ही अपना मुंह उसके नाक के करीब किया। इनाया, कायरव की सर्द आवाज और खूरती स्थिर निगाहें, इनाया मुंह बनाते हुए पीछे हट गई। मिसेज रायचंद दोनों की एक खट्टी मीठी नोकझोंक देख रही थी। कायरव का इनाया के लिए प्यार और परवाह देखकर उनकी आंखें नम हो गई थी, शायद उन्हें अपना वक्त याद आ गया था। कायरव और इनाया दोनों ही भूल चुके थे कि उन दोनों के अलावा भी यहाँ कोई है। फिलहाल दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरने में बिजी थे। अब भी दर्द है, डॉक्टर के पास चलें? कायरव की आवाज में फिक्र साफ झलक रही थी। इनाया का बिगड़ा मूड थोड़ा ठीक हो गया। उसने धीरे से गर्दन हिला दी। नहीं, अब ठीक है, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, ख्याल रखा करो अपना। उसके लिए तो तुम हो, इनाया तपाक से बोली। कायरव ने उसे घूरा तो उसने झट से अपनी बत्ती सी चमका दी। कायरव अफसोस से सर हिलाकर रह गया। अच्छा, अब से मैं अपना ख्याल रखूंगी, अब तुम मुंह मत सड़ाओ, देखते हैं। कायरव का अंदाज देखकर इनाया ने नाक सिकोड़ ली। इनाया, मिसेज रायचंद जी की आवाज उनके कानों में पड़ी। तब जाकर उन्हें याद आया कि वो भी वहीं हैं और एक बार फिर दोनों की नजरें उनके तरफ घूम गईं। इनाया, मेरे वजह से तुम्हारी आई और तुम्हें जो सहना पड़ा, कायरव से शादी के बाद भी तुम्हारे साथ मेरा बिहेवियर ठीक नहीं था, आज मैं अपनी उन सभी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगने आई हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। पास्ट में जो हुआ उसे भुलाकर अपने आज और आने वाले कल पर ध्यान देना, कायरव के साथ हमेशा खुश रहना। कायरव के चेहरे पर अजीब से भाव मौजूद थे, वहीं इनाया का चेहरा बिल्कुल सपाट था। वो कुछ देर सूनी निगाहों से उन्हें देखती रही, फिर कायरव की हेल्प से उठी और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। आपको मुझसे माफी मांगने या गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सालों पहले मेरी आई और मेरे साथ जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अगर आप नहीं होती तो आपकी जगह कोई और होती, आप सिर्फ एक बहाना बनी। जो गलत किया वो मेरे बाबा ने किया, अपनी मर्जी से किया, आपने उन्हें वो सब करने नहीं कहा था, इसलिए आप हमारे दुखों की जिम्मेदार नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि आपने दिल से कभी नहीं चाहा कि मैं कायरव से दूर हो जाऊँ, उसकी लाइफ से चली जाऊँ। शायद आपने हमारी शादी के शुरुआती टाइम में जो किया वो किसी मजबूरी के वजह से किया होगा, या शायद अपने पति के दबाव में आकर आपको वो सब करना पड़ा होगा, इसलिए इसके लिए भी मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप अपने दिल को इस गिल्ट से आज़ाद कर दीजिए और प्लीज़ मुझसे माफ़ी मत मांगिए। अगर कुछ करना ही है तो हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम हमेशा साथ रहें। इनाया सौम्यता से मुस्कुराई। मिसेज रायचंद हैरान थी, वही कायलफ एकटक इनाया को देख रहा था।
आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं सच कह रही हूँ, जो हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं। फिर आपको सजा क्यों मिले? आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप क्यों गिल्ट में जी रही हैं? मेरी नजरों में आप बेकसूर हैं, इसलिए आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मिसेस रायचंद समझ नहीं सकी कि क्या कहें। इनाया ने ही पल भर ठहरते हुए आगे कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहूँ? कहो, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मर्दों के मामले में आपकी चॉइस बहुत ही खराब थी। पहले प्यार किया तो मेरे बाबा जैसे घटिया आदमी से, जिन्होंने अपने फायदे के लिए किसी मासूम की जिंदगी तबाह करने से पहले एक बार नहीं सोचा, और दूसरी बार दिल लगाया तो मिस्टर रायचंद जैसे घमंडी और मगरूर आदमी से, जिनकी नजरों में उनके अलावा किसी दूसरे की कोई औकात ही नहीं, जो अपनी जिद पूरी करने के लिए अपने खुद के बेटे की जिंदगी और खुशियों को बर्बाद करने पर तुले हैं। वैसे देखा जाए तो उन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। मेरे बाबा ने अपने स्वार्थ के लिए मेरी आई और मेरी जिंदगी तबाह की, और उन्होंने अपनी जिद में अपने बेटे की जिंदगी और खुशियों को बर्बाद करने से पहले एक बार नहीं सोचा। मेरे बाबा ने चंद पैसों के लिए मेरा सौदा कर दिया, और कायरव के डैड ने भी उसकी लाइफ को एक बिजनेस डील की तरह ट्रीट किया। इन दोनों मर्दों के वजह से आज आप यहाँ सर झुकाए खड़ी हैं। बस यही एक गलती है आपकी कि आपने हर बार अपने लिए गलत इंसान को चुना। वो दोनों ही आपके लायक नहीं थे। मेरी मानिए तो अब उन दोनों को अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर करिए और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना शुरू कीजिए। मिसेस लायचंद के पास अब भी जैसे कहने के लिए कुछ नहीं था। वो बस खामोशी से इनाया को देखती रही। इनाया ने फौरन कायरव की बाँह पकड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। लाखों नहीं करोड़ों में एक लड़का चुना है मैंने अपने लिए। इनाया खुद पर इतराने लगी। मिसेस रायचंद की नज़र कायरव पर गई, जो खामोशी से इनाया को देख रहा था। उनके होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। बहुत लकी हो तुम जो तुम्हें कायरव जैसा लविंग और केयरिंग लाइफ पार्टनर मिला, मैं जानती हूँ, और इसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि कायरव को इस दुनिया में आप लेकर आईं। हाँ, मेरा बस इतना ही रोल रहा कि मैंने कायरव को बर्थ दिया। मिसेस रायचंद के चेहरे पर अजीब सी उदासी पसर गई। इसके अलावा मेरा कोई रोल नहीं उसकी लाइफ में। आज वो जो है जैसा है अपने दादा दादी के वजह से हैं। उन्होंने कायरव को पाला, उसके अंदर उनकी परवरिश और संस्कार झलकते हैं। उन्होंने कायरव को एक बेहतरीन इंसान बनाया। शायद अगर मैंने उसे पाला होता तो वो भी अपने डैड जैसा बन जाता।
वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आपने कायरव को जन्म दिया और दादा दादी ने मिलकर इन्हें पाला, इसीलिए मैं आप तीनों की शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों की वजह से मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला जिस पर मुझे नाज है। इनाया को गर्व था और वो आंखों में मोहब्बत लिए प्राउडली उसे देख रही थी। तुम दोनों हमेशा साथ में खुश रहो, मिसेस रायचंद के दिल से दुआ निकली, जिसे दोनों ने सर झुकाकर स्वीकार किया। फिर वो चली गईं। हालांकि इनाया उनसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। कायरव ने तो पूरे वक्त कुछ कहा ही नहीं। मिसेस रायचंद के जाने के बाद इनाया कायरव की तरफ घूमी और उसके सीने से लग गई। तुम्हारी मॉम ने जो कहा उसके बारे में तुम भी ज्यादा मत सोचो। मुझे सच में उनसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही तुमसे कोई शिकवा है। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी थैंकफुल हूँ कि तुमने मुझे चुना। तुम्हारे जितना चाहते वाला हमसफर मुझे दूसरा कहाँ मिलता। तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को ना सिर्फ बर्बाद होने से बचाया, बल्कि उसे हर तरह से खुशियों से भर लिया। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और मैं हमेशा यूं ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इनाया ने अपनी बाहों को उसकी पीठ पर लपेट दिया। कायरव ने ठंडी सांस छोड़ी। किस्मत का ये कैसा खेल था, कैसे उसने उन सबकी जिंदगियों को आपस में उलझाया, ये देखकर वो हैरान था। मिसेस रायचंद की बातें अब भी उसके जहन में घूम रही थीं। अचानक उसका ध्यान उस बात पर गया। प्रकाश जी आए थे मिसेस रायचंद के पास, तब उसका बर्थ हो चुका था। अगर उस वक्त मिसेस रायचंद ने उनकी बात मान ली होती तो इनाया उसकी बहन होती। सोचकर ही उसका दिल अजीब सा हो गया। उसने तुरंत इस ख्याल को अपने दिमाग से निकालकर बाहर फेंका और इनाया को अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। कुछ देर बाद दोनों कार में थे। कायरव ड्राइव कर रहा था और उसके साइड में बैठे इनाया मज़े से उसकी उंगलियों के साथ छेड़खानी कर रही थी। वो खुश थी और कायरव के होठों पर भी हल्की मुस्कान बिखरी थी। आज उनके रिश्ते को मिसेस रायचंद का आशीर्वाद मिल गया था। अब वो दोनों नित्या और मानव को रिसीव करने जा रहे थे। ड्राइव करते हुए कायरव बार बार इनाया को ही देख रहा था। इस बार भी उसने निगाहें इनाया की तरफ घुमाई। अगले ही पल तेज रोशनी उसकी आंखों से टकराई और पल भर के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। अगले ही पल उसकी और इनाया की दिल दहला देने वाली चीख फिजाओं में गूंजी और धरती तक कांप गई। इनाया की तरफ से आती तेज रफ्तार ट्रक उनकी कार को बुरी तरह कुचलकर जा चुकी थी और फर्श खूनी रंग में रंग चुका था। टू बी कंटिन्यूड। आप सभी जानते होंगे कि ये स्टोरी रैपिड कॉम्पिटिशन में लिखी गई है, जिसका आज लास्ट डे है, लेकिन अभी कहानी में बहुत कुछ बचा है जिसे इतनी जल्दी समेटना पॉसिबल नहीं है, और जल्दबाजी में मैं स्टोरी की खूबसूरती को ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए इसे यहीं ख़त्म कर रही हूँ एक सस्पेंस के साथ। आगे की स्टोरी आपको जल्द ही पढ़ने को मिलेगी, जिसमें आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। उसे आप सीज़न 2 मान सकते हैं। सीज़न 1 का आज अंत हो गया।